मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 23 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने युवा साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और इस डेली ऑडियो लेक्चर में अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों स्वागत करता हूं, विशेष रूप से अपने उन चार युवा साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुप्रिया कुमारी रामपुर बिहार से, तन्नु पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, अमित कुमार नई दिल्ली से और लालजी जायसवाल सिंगरौली उत्तर प्रदेश से। आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग यूपीएससी के इंटरव्यू के कुछ प्रश्नों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए अब थोड़ी सी न्यूज एनालिसिस के तहत कुछ जरूरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने न्यूज सुनी ही होगी और सच पूछिए तो न्यूज में और यहां तक कि अखबारों में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही हैं। वक्त इतना नहीं है कि हम सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें मैं सबके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। पहली खबर आपने सुनी कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी इसी वीक चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, राइट? डेफिनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी की चीन की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वैसे भी चीन चूंकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, एक बड़ा देश है, उस लिहाज से भी हमारे खासकर जो पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे संबंध किस तरीके से हैं, क्या हैं, उनके बैकग्राउंड के साथ आगे कैसे होने चाहिए, इस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और चीन तो और पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान उनमें खासकर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। तो मित्रों, जब हमारे प्रधानमंत्री जी उस यात्रा पर जाएंगे तो आपको इस घटना पर बकायदे नजर रखनी है। जो भी चीजें उसके बाद आएंगी अखबारों में वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। न्यूज में आपने दो पॉइंट खासकर सुने। देखिए, जब न्यूज में कोई पॉइंट हाईलाइट किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि इस लिहाज से आप इस यात्रा को देखिए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। पहला तो आपने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके डेटा शेयरिंग के बारे में संभावनाएं हैं। दूसरा यह भी देखा कि नाथुला दर्रे से होकर के जो मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं उसकी फिर से संभावनाएं हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, यानी कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप ये कभी मत भूलिए कि जो ऑल इंडिया रेडियो है या जो डीडी न्यूज है ना, वो नो डाउट कि वो ऑफिशियल मीडिया है, ठीक है, वो प्रसार भारती के अंतर्गत काम करते हैं, सरकार का सीधा उन पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अपना एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इसीलिए आपको दूरदर्शन न्यूज और आकाशवाणी न्यूज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वो अगर कोई पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जब आप पेपर्स देखेंगे तो ये बातें उससे प्रूफ भी होती हैं। इसके बाद आपने खबरें सुनी कि दो अध्यादेश राष्ट्रपति जी ने जारी किए हैं, अध्यादेश। कल के अखबारों में था कि मंत्रिमंडल ने उसे स्वीकृति दे दी है और राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होते ही वो ऑर्डिनेंस जारी हो जाते हैं। मित्रों, जो ऑर्डिनेंस का जो टॉपिक है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डिनेंस का। इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्यों लाया जाता है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, आगे चल करके वो क्या उसको करना पड़ता है, प्री के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी, दोनों दृष्टि से आपकी बहुत अच्छी समझ मैं कहना चाहूंगा इस टॉपिक पर होना चाहिए, ऑर्डिनेंस पर। अभी आप देखिए कि दो ऑर्डिनेंस कल जारी किए गए हैं जिसमें एक की चर्चा भी सबसे ज्यादा हो रही है और वो ऑर्डिनेंस है खासकर 12 साल और 16 साल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के मामले को लेकर के, और उसकी जो सजा है वो बहुत कठिन बना दी गई है, मृत्यु दंड या उम्र कैद। और यहां चलिए, ये सब तो आज के अखबारों में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, उसको उस पर बात करने की मैं बहुत ज्यादा जरूरत नहीं समझता हूं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए फ्रेंड्स, वो है कि इस तरह के जो मामले होंगे उनको निपटाने के बारे में जो व्यवस्था की गई है। देखिए, हमारे यहां जो सबसे बड़ी जो बात है, जिस संकट के दौर से हमारा सिस्टम गुजर रहा है, नो डाउट कि उसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका बहुत बड़ा हाथ है। न्यायिक प्रक्रिया का इस मामले में अभी आप देखिए कुछ दिनों में कुछ जजमेंट आए हैं जो इतने इंपॉर्टेंट जजमेंट थे, कोई 15 साल के बाद आ रहा है, कोई 12 साल के बाद आ रहा है, कोई 20-20 साल के बाद जजमेंट आ रहा है, मतलब न्याय मिलने में इतना लंबा वक्त। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ भी अन्याय हो रहा है, और जिसके साथ न्याय होना चाहिए उसके साथ भी न्याय नहीं हो रहा, उसके साथ भी अन्याय हो रहा है। और यही कारण है कि जो उच्च वर्ग है या जो पैसे वाला वर्ग है, क्योंकि उसके पास ताकत है कि वो उसको डिले करता चला जाए एक कोर्ट से, फिर वो उस अपील कर दे ऊपर के कोर्ट पर, और उसके अगेंस्ट में फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे, तो इससे उसके बड़े आराम से उसकी जिंदगी कट जाती है, 20-25-30 साल तो निकल सकते हैं। तो फिर न्याय का भय रह कैसे जाएगा? अब आप देखिए कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो इसी सिद्धांत के तहत लाया गया है कि अगर सजा को कठिन बना दिया जाए तो लोग भयभीत होंगे। देखिए, सजा का उद्देश्य कभी भी बदला लेना नहीं होता है। राज्य अपने नागरिकों से बदला नहीं लेना चाहता है, उसका जो एटीट्यूड है वो रिवेंज का एटीट्यूड नहीं है। भय जरूर वो पैदा करना चाहता है, क्योंकि रामचरितमानस की एक लाइन है, आपको मालूम है, भय बिन होई न प्रीत। आपको कुछ न कुछ व्यवस्था में भय पैदा करना पड़ता है कि अगर आपने ये गलती की तो आपको ये सजा भुगतनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा सामने वाला सजा के लिए भयभीत होगा उतना अधिक वह उस गलती को करने से अपने आप को बचाएगा, रोकेगा, ये इसका उद्देश्य है। तो यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है वो ये है कि अगर कोई ऐसा दुष्कर्म होता है 16 साल की लड़की, उम्र से कम उम्र की लड़की वहां तक की, तो पहली बात तो यह कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, यानी कि तेज गति से काम करने वाले न्यायालय बनाए जाएंगे। फिर इस दुष्कर्म की जो जांच होगी 2 महीने में पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो पता लगा कि जांच में सालों लग रहे हैं, हम ऐसा देख रहे हैं हम इस तरह की व्यवस्था। इसके बाद फिर अगर अपील होती है तो 6 महीने में उसका निपटारा करना होगा, और सारा का सारा मामला 10 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि 10 महीने में सजा की घोषणा हो जाएगी। मुझे लगता है कि यह बहुत उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तब जाकर के जो इस तरह के दुष्कर्मों में जो लिप्त रहने वाले लोग हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसी खौफनाक बात उठ भी रही है तो इसका जो खौफ है वो उस दुष्कर्म के खौफ को शायद दबाने में सक्षम हो जाए। अभी वो दबाने में सक्षम नहीं है। मित्रों, ये एक पार्ट है। इसका एक दूसरा हिस्सा भी है। दूसरा हिस्सा ये है कि जो अब लगातार प्रश्न किया जा रहा है कि निर्भया कांड में आप देखिए, उसके बाद पूरा देश आंदोलित हो गया था, उसके बाद थोड़े से कानून कठिन किए गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह के दुर्घटनाओं में, दुर्घटना ही मैं कहना चाहूंगा मित्रों, कि कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। डेटा के स्तर पर भी, आंकड़ों के स्तर पर भी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका फिर क्या रास्ता हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है? देखिए, इसमें जो सामाजिक जो कार्य है, सामाजिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मित्रों, उस एंगल से थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज कहां है? समाज किस तरीके से इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है? यह मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप लोग इस इशू पर विचार करें। और एक साल बकायदे इस पर सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि क्या कारण है कि दुष्कर्म, महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए इतने सारे कानून बनाए गए हैं, इतने सारी संस्थाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन रुक नहीं रहे, अपराध नहीं रुक रहे हैं। तो उसी पैटर्न पर मैं ये आपको सोचने के लिए प्रश्न दे रहा हूं। मित्रों, आपने न्यूज सुनी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अभी जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, महासचिव बनाए गए हैं। उसमें एक शब्द आया, पोलित ब्यूरो। ये पोलित ब्यूरो क्या है? देखिए, पोलित ब्यूरो बेसिकली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह शब्द यूज किया जाता है। आपको दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पोलित ब्यूरो नहीं मिलेंगे, है ना, उसमें एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगे, कार्यकारिणी समिति मिलेगी। तो बेसिकली जो पोलित ब्यूरो है ये मार्क्सवादी पार्टी की एक कार्यकारिणी समिति ही है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो पॉलिसी बनाती है। तो ये सोवियत रूस में जब साम्यवादी सरकार आई तो वहां से वो पोलित ब्यूरो शब्द आया है। तो भारत में भी पोलित ब्यूरो शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी, नीति निर्माण करने वाला ग्रुप समूह। फ्रेंड्स, आज के अखबारों में आपने उत्तरी कोरिया के बारे में खबर पढ़ी होगी कि अब उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावनाएं बन चुकी हैं। उत्तरी कोरिया ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा की है अपने नीतियों में परिवर्तन को लेकर के, कि अब वो परमाणु परीक्षण पर ध्यान नहीं देगा, अब वो अपने देश के आर्थिक विकास पर ध्यान देगा। ये बहुत ही राहत देने वाला स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत से जो राजनीतिज्ञ हैं वो उत्तरी कोरिया के इस वक्तव्य को अभी संदेह की दृष्टि से भी देख रहे हैं कि ये कोई चाल न हो, क्योंकि तानाशाहों की कुछ इस तरह की चीजें तानाशाहों की होती भी हैं। लेकिन फिर भी कम से कम दुनिया में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उसको लेकर के थोड़ी सी राहत तो राहत देने वाला वक्तव्य तो इसे माना ही जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वक्तव्य है, इसको अब देखते हैं कि आगे क्या शेप लेता है। और खासकर अमेरिका के साथ जिस दिन उत्तरी कोरिया के शासक की बातचीत संपन्न हो जाएगी तब जाकर के चीजें कॉन्क्रीट शेप ले पाएंगी। मित्रों, इसी के साथ ही अखबारों में देख रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति, उनके ऊपर महाभियोग लगाने के मामले को लेकर के पिछले 2-3 दिनों से काफी गहमा गहमी बनी हुई है। आज के अखबारों में भी काफी बातें दी हुई हैं। तो यहां फिलहाल मैं केवल आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये भी देखिए आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। वैसे भी अदरवाइज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया कि अध्यादेश ऑर्डिनेंस को लेकर के होना चाहिए, इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, एग्जाम की तैयारी कुछ इसी तरीके से करनी पड़ती है कि जनरल तरीके से हम सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं। उसमें एक टॉपिक अध्यादेश का है और दूसरा इंपीचमेंट का है, महाभियोग का। तो आपको पूरी महाभियोग की प्रक्रिया बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, है ना। और उसी के तहत स्पेशली चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर लगाने की बात चल रही है तो न्यायाधीशों पर कैसे ये प्रक्रिया काम करती है, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। मतलब उसमें किसी तरह का कोई भ्रम ना हो, क्योंकि जो प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यही तो होता है कि आपको थोड़ा सा शेड चेंज कर देंगे, जानबूझ करके आपको उलझाने और फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों, ये दो टॉपिक हैं, इन पर आप अच्छी तैयारी करें। फ्रेंड्स, आइए अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, इंटरव्यू के क्वेश्चंस। यूपीएससी के जो इंटरव्यू है, अब एक हमारे स्टूडेंट रहे हैं अच्छे लाल चौहान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, 5th बैच के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन भेजे हैं और ये उन्होंने अपने इंटरव्यू से ही संबंधित क्वेश्चन भेजे हैं, राइट। तो देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं और इन क्वेश्चंस को रखने का, आप ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू के क्वेश्चन का ऑलमोस्ट अब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। मैं केवल इस रूप में ये क्वेश्चंस रख रहा हूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि आप बेवजह के अपने दिमाग में आतंक मत पालिए, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, कहीं ये ना पूछ लिया जाए, कहीं ये ना पूछ लिया जाए। अभी आपको मैं जो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं ये पूछे गए हैं और आप देखेंगे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया सा नहीं लगेगा, अटपटा सा नहीं लगेगा, या ऐसा नहीं लगेगा कि अरे इसके बारे में तो हमने कुछ सुना ही नहीं या हम कुछ जानते ही नहीं। यानी कि जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं वो आपकी सीमाओं को समझते हैं, आपकी क्षमता और योग्यता को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसी आधार पर ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो आपको गूंगा बनाने के लिए प्रश्न नहीं करते कि ऐसा प्रश्न कर दो कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए, सामने वाला कुछ लिख ही नहीं पाए। तो जब आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो फिर आपका मूल्यांकन किया कैसे जाएगा। तो मित्रों, देखिए, अच्छे लाल चौहान जिसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं। उनसे पूछा गया 3 तलाक पर, उन्होंने इसी तरह से लिख करके भेजा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भेजे हैं उन्होंने टॉपिक भेजे हैं, यानी तो मैं टॉपिक ही आपको बता सकूंगा। 3 तलाक, इसके बाद है आपकी कावेरी जल विवाद, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही क्योंकि उन्होंने मतलब भाषा हिंदी है, लिपि आपके रोमन है, है ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना, तो आप उतना मुझे मार्जिन दे करके चलिएगा। आयुष्मान योजना, राइट, इसके बाद है मालदीव, इसके बाद है फिर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए उनके राज्य से, क्योंकि वो यूपी के थे तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। किसानों की आय दुगुनी करने के बारे में प्रश्न, भूकंप, ज्वालामुखी चक्रवात, इन पर प्रश्न पूछे गए। अब हमें इसका बैकग्राउंड नहीं मालूम कि क्यों पूछे गए, हो सकता है कि उन्होंने ज्योग्राफी ली हो या कोई बात ऐसी आ गई हो, लेकिन ये तो आपके सिलेबस में सीधे सीधे है, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, इन सब के बारे में तो आपको मालूम होना ही चाहिए। डिफरेंसेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ रिवर, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियों में क्या फर्क है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लाभ और नुकसान। इसके बाद है मित्रों, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और इजराइल के साथ संबंध। बहुत आप देखिए कि इजराइल के तो यहां आए थे तब हम लोगों ने कितनी बातें की थी। इसके बाद है केंद्र की योजनाओं से संबंधित प्रश्न, केंद्र की जब भी कोई योजना आती है तो अपन उस पर बात करते ही करते हैं। फिर है सीरिया से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन, साइबर सीरिया देखिए गड़बड़ हो जाता है, साइबर सुरक्षा को लेकर के तो अब आप देख रहे हैं कि अखबारों में कितना कितनी बातें हो रही हैं। साउथ अफ्रीका और इंडिया की संस्कृति सभ्यता से संबंधित प्रश्न, मृदा कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, बैंकिंग घोटाला से प्रश्न, ये उन्होंने कुछ टॉपिक लिख करके भेजे हैं मित्रों। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा पढ़ने में चूंकि अटपटा सा रहा है तो शायद आपको उतना मजा ना आया हो सुनने में, लेकिन जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो डेफिनेटली आप तक पहुंच गई होगी। तो मित्रों ये कुछ प्रश्न थे, और एक अच्छी बात यह है कि आपने महसूस किया होगा कि अगर आप थोड़े से भी लंबे समय से इस डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं तो भूकंप, ज्वालामुखी की चर्चा तो हम लोग तब करते हैं जब कोई उससे रिलेटेड घटना घटित होती है, अदरवाइज करंट अफेयर्स से ही संबंधित ज्यादातर प्रश्न हैं आपने देखा। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंटली अखबारों में आए हैं, न्यूज में आए हैं, और हम लोगों ने भी उस पर बातचीत की है। तो दोस्तों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स पर। आज न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, अदरवाइज सोमवार को बहुत कम संख्या होती है, तो एक अच्छी बात है कि आपको ढेर सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। अंतिम चरण है फ्रेंड्स ईमेल का, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अमित कुमार, कृषक्ति राज पुरोहित, सुधा यादव, रोहित रांगिड़े, वीरेश शर्मा, महेंद्र कुमार, अनीश कुमार गुप्ता गिरिडीह झारखंड से, माधव सिंह, धर्मेंद्र कुमार मौर्य अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, अच्छेलाल चौहान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, उनके बारे में मैंने अभी बताया, हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं, ताहिरा फारूकी इंदौर से, केबी मीना, श्रुतंजय नारायणन, जतिन कुमार शर्मा और एकनाथ पाखरे, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद और आभार अच्छेलाल चौहान का कि उन्होंने जो उनके इंटरव्यू में प्रश्न पूछे गए थे वो हम लोगों को उपलब्ध कराए ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, तो उनकी इस भावना का मैं सम्मान करते हुए उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सबकी ओर से मित्रों, यानी कि सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि उन्हें अपने इस प्रयास में बहुत अच्छी सफलता हासिल हो। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।